الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. متین و حضرات، ہم آیت 88 سے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ کی یہ کتاب جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی قدر کریں، اس میں جو مضامین ہیں ان پر غور کریں، اسے تدبر کا موضوع بنائیں، یہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں سے سوالات کر کے گریز و فرار کی راہیں تلاش کرتے ہیں. اسی زمن میں ان کا یہ سوال نقل کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر تو پھر غور کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ آسمان سے وحی کیا جاتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے، ہماری سمجھ میں آنی چاہیے. ہمارے زمانے میں بھی بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں اور بعض اکابر اہل علم نے لکھی ہیں جس میں اس کو موضوع بنایا گیا ہے. قرآن مجید نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ یہ انسان کے دائرہ علم سے باہر کی بات ہے. انسان وحی کو، اس کی حقیقت کو، اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے کرتے ہیں، ان کی ذات و صفات کا کیا معاملہ ہے، اس کو اپنی گرفت میں کیسے لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ہزاروں لاکھوں مخلوقات بنائی ہیں جن کا دائرہ علم وہ بھی نہیں ہے جو انسان کا ہے، لیکن وہ اپنے اس دائرے کے اندر ہی اپنی جبلتوں کے تقاضے پورے کرتی ہیں. وہ اگر یہ خیال کریں کہ ان کو اس طرح کا علم مل جائے جو انسان کو دیا گیا ہے تو سوائے اس کے کیا ہے کہ حسرت اور مایوسی میں مبتلا رہیں. انسان کو بھی اپنے حدود علم سمجھنے چاہیے. اس کا علم اس کے حواس سے شروع ہوتا ہے، اس کے ظاہری حواس، اس کے باطنی حواس. اس کے لیے ذریعہ علم ہی یہی ہے. یہ حواس اس کا دائرہ علم متعین کر دیتے ہیں. ان کی طاقت بڑھائی جا سکتی ہے، ان کے متبادل نہیں تلاش کیے جا سکتے. اس سے چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں، انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور ان کی طاقت بڑھا کے بہت دور کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے. تاہم اس کے علم کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اخلاقی بھی دیا ہے، حصے جمالیات بھی دی ہے، اور اس کو عقل بھی دی ہے. وہ ایک عقلی وجود ہے، لہٰذا استنباط کرتا ہے، اور استنباط کر کے جو کچھ اس کے مشاہدے میں آتا ہے اس کے کبھی لازمی نتائج نکال لیتا ہے، کبھی امکانی نتائج نکال لیتا ہے. اس کے علم کے حدود یہی ہیں. اس سے نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ اسے پیچھے رہنا چاہیے. اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ما اوتیتم من علم الا قلیلا. وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روح جس کا نفع کیا جاتا ہے، جو لفظ بن جاتی ہے، جو نفس بن جاتی ہے، یہ اس کے دائرے کی چیز نہیں. وہ اپنے دائرے کو پہچانے اور سب سے پہلے یہی علم حاصل کرے کہ اس کا دائرہ علم کیا ہے، کہاں تک ہے، اسے کیا جاننا ہے اور کیا جاننا اس کے لیے ممکن ہے. یہ تنبیہ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ پیغمبر سے وہ سوال کرو جو پیغمبر کے دائرے کے. اگر تو اس نے جد و جہد کر کے یہ وحی حاصل کر لی ہے، اس کے لیے کوئی مراقبے کیے ہیں، تم نے کوئی طلب اس کی دیکھی ہے، تو وہ مسئول ہو سکتا ہے. उसका मामला तो ये है कि हमने राह चलते उसको कहा है कि हमने तुम्हारा इंतखाब कर लिया। उससे एक लम्हा पहले उसके यहाँ न इसकी कोई तलब थी न इसके कोई आसार थे, और अब भी सूरत हाल ये है कि हम ये सब देने के बाद जो सरासर हमारी रहमत है इसको ले लें तो वो कोई मददगार नहीं पा सकता कि दोबारा इसको हासिल कर ले। उसका दायरा भी तय है, वो अपने तौर पर किसी मश्क से किसी रियाजत से ये चीज़ हासिल नहीं कर सकता। ये बता दिया कि ये तो पैगंबर का यारा भी नहीं है, कुजा ये कि दूसरे इंसानों के बारे में ये ख्याल किया जाए कि वो फलां और फलां तरीका इख्तियार करके मलायाला तक रसाई हासिल कर लेंगे या कोई इल्हाम पा लेंगे या कोई कश्फ हासिल कर लेंगे, ये तो पैगंबर का दायरा भी नहीं। तो इस वजह से आम लोग इनकी क्या हैसियत है। अब ये बताया कि तुम्हें किस पहलू से कुरान पर गौर करना था, यानी कुरान मजीद के बारे में अगर ये शुबा है कि ये आसमान की वही है या नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आया है या नहीं है, तो इस पहलू से गौर करो कि क्या ये इंसानी कलाम हो सकता है। चुनाचे कुरान ने जगह जगह इसी तरह अपने आप को पेश किया, यानी यहाँ क्या है वही इंसानी इल्म का दायरा, वही को हम न देख सकते हैं ना उसकी हकीकत समझ सकते हैं ना वो हमारे दायरा इल्म की चीज़ है। कुरान को हम देख सकते हैं, कुरान को हम पढ़ सकते हैं, कुरान में जो चीज़ें बयान हुई हैं उन तक हमारी रसाई है, उनको हम समझ सकते हैं, वो हमारी ज़ुबान में है, हम उस ज़ुबान से वाकिफ है। ये सारी चीज़ें उसी दायरे में आती हैं जहाँ से इंसान का इल्म शुरू होता है। तो तवज्जो दिलाई है कि इधर से कुरान मजीद की हकीकत को समझने की कोशिश करो। उसमें फिर मैंने बारहा ये कहा भी है और इसको लिखा भी है कि कुरान ने तीन चीज़ों को मुतय्यन करके बता दिया है। एक ये कि ये जब सादिर हुआ तो ये देखो कि इसके पीछे इंसानी अमल है, इंसानी अमल किस तरह होता है। हम जब किसी बड़े से बड़े आदमी को भी, ज़ाहिर है इंसान सारे एक जैसे नहीं हैं, बड़ा साइंसदान है, बड़ा फ़लसफ़ी है, बड़ा हकीम है, यही लोग दुनिया पर हुकूमत करते हैं, उनके अजहान पर हुकूमत करते हैं, बड़े से बड़े आदमी को भी उठा लें, वो हमारे ज़माने का हो या माजी का, अरिस्तू अफलातून हो, आइनस्टाइन हो, शेक्सपियर हो, गालिब हो, किसी को उठा लें, ये देखें कि उसके यहाँ जो कुछ ज़हूर हुआ है क्या वो सही व ख़ता, मश्क व मज़ावलत, इल्म और बेइल्मी के मराहिल से गुज़रने के बाद हुआ है, या अचानक एक दिन जैसे फव्वारा निकल पड़ता है कि इल्म सादिर होना शुरू हो गया है। कोई इस्तिसना नहीं मिलेगा, सबके यहाँ यही है, पैदा हुए, कुछ सीखा, कुछ समझा, कोई आरा कायम की, इल्म में भी अदब में भी कुछ मश्क की चीज़ें सामने आईं, पस्त थीं बुलंद हुईं, मश्क से उनको बेहतर किया, गलती की उसको दुरुस्त किया। एक लंबा अमल है जिससे गुज़रने के बाद आला इल्म और आला अदब वजूद में आता है। तो पहली बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये देखो, और ये देखने में ज़ाहिर है उस वक्त जो लोग हैं वो सामने हैं, एक छोटी सी बस्ती के लोग हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर से नहीं आए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके दरमियान पैदा हुए हैं, उन्होंने वहीं मक्के के बाहर ही बकरियां चराई हैं, वहीं से तजारत के लिए निकले हैं, उन्हीं के काफ़लों में सफ़र करते रहे हैं, उनके मामलात उनके सामने हुए हैं, निकाह उनके सामने हुआ है, ज़िंदगी के नशेब व फराज सामने गुजरे हैं। ये कहा है कि फ़कत लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, यानी मैं कोई अजनबी शख्स नहीं हूँ, तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं मैंने। कोई सही व ख़ता के मराहिल, कोई इल्म व बेइल्मी के मराहिल, कोई मश्क और मुज़ावलत के मराहिल, इस तरह के किसी कलाम को सादिर करने के लिए किसी तलब के मराहिल, कोई चीज़ कभी अदना दर्जे में देखी है? तो कुरान ने तवज्जो दिलाई कि इंसानी कलाम के लिए ये सब ज़रूरी है, यहाँ इसका कोई शायबा भी नहीं देखो। दूसरी बात ये कही है कि इंसान चूँकि सही व ख़ता ही से सीखता है, ट्रायल और एरर, इसलिए जब वो बरतर जगह पर पहुँच जाता है उस वक्त भी उसका कलाम ना अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, जिसको आप सूरत कहते हैं, और ना उसकी हकीकत के लिहाज से, उसमें जो इलम बयान होता है, कभी तजादात से पाक हो सकता है। उसमें चीज़ें आखिर दम तक इसी तरह नज़रसानी से गुजरती रहती, अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कोताही हो गई, बात उस तरह बयान नहीं हुई जिस तरह से दोनों चीज़ों का रब्त होना चाहिए था, उसमें खला रह गया, ये चलता रहता है। तो इसको कुरान ने बयान किया कि लव काना मिन्द गैरिल्ला लवजदू फी इख्तलाफन कसीरा। अगर कभी ये भी किसी इंसान का कलाम होता, 23 साल के अरसे में ये तुम्हारे सामने आया है, इसमें भी यही चीज़ देखते, यानी एक चीज़ आती फिर उसकी गलती बाजी होती, फिर उसको दुरुस्त किया जाता, कहीं तरमीम की जाती, कहीं तगैयुर किया जाता, जैसे कि बड़े से बड़े शायर, बड़े से बड़े अदीब, बड़े से बड़े फ़लसफ़ी के यहाँ तुम देखते हो। ये हो मुमकिन ही नहीं है किसी के लिए। इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, बड़े से बड़े आदमी की तारीख पढ़ के देख लीजिए, वरना उस पर खुद वाज़े होता रहता है कि जो कुछ मैंने लिखा था उसमें भी ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें ये पहलू है जिस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और फिर ये कि ये तो मामला है किसी चीज़ के बेहतर करने का, उसके बाहमी तजादात को दूर करने का, उसके रब्त निज़ाम को सही रखने का, इसमें भी खला होते हैं। और आखिरी और तीसरी चीज़ ये बयान की है कि वो गलती से पाक भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि अपने ज़माने में गलती वाज़े न हुई हो, लेकिन 150 साल भी नहीं गुजरेंगे कि कहीं मिसाल की गलती, कहीं तारीख की गलती, कहीं बयान की गलती सामने आ जाए, इससे भी पाक नहीं हो सकता। तो ये तीनों चीज़ें सामने रख के तवज्जो दिलाई है कि कुरान को देखना है तो इस जाविये से देखो, और अगर ये तीनों चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो फिर जाओ और सब जमा हो जाओ। अगर ये सब तुम भी कर सकते हो, यानी ऐसे ही सही और ख़ता के मराहिल से गुज़रे बगैर ये सब कर सकते हो, ऐसे लोग जमा कर सकते हो तुम भी कि जिनके यहाँ कोई शायबा ना हो, फिर उनको कहो कि आ जाओ बैठ जाओ, और उनकी ज़ुबान से कुरान जैसी किताब
ऐसे लोग
सादिर
जमा
होनी
कर
शुरू हो
सकते
जाए।
हो तुम भी
अगर
जिन
तुम भी ये कर सकते हो तो कर डालो। तो इसको इस जाविये से फिर यहाँ भी बयान किया, यानी वही मज़मून है, तुमने कुरान की कदर नहीं पहचानी, इस नेमत को तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार ने नाजिल किया, तुमने इससे हिदायत हासिल करनी थी, इसके बजाय इधर उधर की बातें करके गुरेज व फरार के रास्ते तलाश करने लग गए, और उसमें इस तरह के सवालों पर तवज्जो मरकूज़ कर ली कि वही आती कैसे है और होती क्या है, उसकी हकीकत तो समझ लो और अपने इलम के हदूद भी जान लो, लेकिन अब हम तुमको बताते हैं कि अगर इस कुरान के बारे में फ़ैसला करना था तो कैसे करना था। तो इरशाद फरमाया कि कुल इन इज्तमअत अल इंस वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्ल हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्ल वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। पीछे ये कहा था कि अगर हम चाहें तो जो कुछ हमने तुम्हारी तरफ वही किया है वो छीन कर ले जाएं, फिर इसके लिए तुम हमारे मुकाबले में अपना कोई मददगार ना पाओ, मगर ये सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है कि तुम इससे सरफराज हुए हो। इस पर पिछला मज़मून ख़त्म हुआ था। फरमाया हकीकत ये है कि उसका फ़ज़ल तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा है। कह दो कि अगर सारे इंसान और सारे जिन इकट्ठे हो जाएं कि ऐसा कुरान बना लाएं, तो इस जैसा कुरान न ला सकेंगे अगरचे वो एक दूसरे के मददगार बने। तो ये उसी पहलू से कहा है जिसकी मैंने वजाहत कर दी कि इंसानी कलाम जिस तरह वजूद में आता है उसके ये मराहिल हुआ करते हैं, वो ऐसा होता है, और अपने कमाल पर पहुंचने के बाद भी अपने अंदर ये चीज़ें रखता है, उसको दूसरी जगह बयान कर दिया है। ये बात कुरान ने एक से ज़्यादा मकामात पर कही है, कहीं ये कि एक सूरा, कहीं कहा है 10 सूरतें। तो यहाँ पर पूरे कुरान के बारे में कहा कि सारे इंसान और सारे जिन इकट्ठे हो जाए और फिर वो उन्हीं मेयारात पर कोई कलाम पेश करें, और वो हो भी इस शान का कि दुनिया के बारे में, इल्म के बारे में जो बड़े बड़े सवालात हैं उनको इस एतमाद से ज़ेर बहस ला रहा हो, उसके लफ्ज़ लफ्ज़ में खुदा बोलता नज़र आए, इस शान की कोई चीज़ तजुर्बा करके देख लो, मालूम हो जाएगा। तो इस पर मैंने लिखा है कि ये चैलेंज इस लिहाज से है कि अपनी हिदायत, मजामीन व मबाहिस और अपने उसलूब बयान और तर्ज इस्तदलाल के लिहाज से कुरान जिस शान का कलाम है, उस शान की कोई चीज़ तमाम जिन्नो इंस मिलकर भी ज़ोर लगाएं तो कभी पेश नहीं कर सकते। चुनाचे ये हकीकत है कि पिछले 1400 साल में कोई शख्स कभी इसकी जसारत नहीं कर सका। ये कुरान का चैलेंज है, और कोई एक किताब, कोई एक शख्स भी ऐसा पेश नहीं किया जा सका जो इस तरह इस शान की किताब भी पेश कर दे और फिर उसमें वो सारी खामियां भी ना हों जो मैंने अर्ज़ की, उसमें वो सारे मराहल भी ना गुज़रे हों। इस तरह की जितनी कोशिशें की गई हैं, बाज़ लोगों ने कोशिश की इसकी, वो सब कुरान को सामने रख कर उसके उसलूब की नक्काली की कोशिशें, यानी वो मुकाबिल की किताब पेश करने की कोशिश नहीं है। कुरान ने अपनी नक्काली का चैलेंज नहीं दिया। वो तो जब एक चीज़ वजूद में आ जाती है तो चार जुमले हम भी उस तरह के बना लेते हैं। कुरान मजीद ने उस शान की किताब अलग से पेश करने का चैलेंज दिया है जिसमें वही सिफात हों जो उसी तरह वजूद में आए, जिसका वही पस मंज़र हो, जो बजाय खुद एतराफ़ अज्ज़ है, यानी नक्काली की कोशिशें खुद बता रही हैं कि इंसान अगर कुछ कर सकता है तो यही कर सकता है कि 2-4 आयतों की नकल पेश फरमा दे। ताहम ये कोशिशें भी सरासर नाकाम हुई और उनके करने वाले मज़े का बनकर रह गए। तो ये कुरान मजीद ने अपने मुखातबीन को तवज्जो दिलाई कि इस कुरान को इस जाविये से देखो, इस तरह से इसके बारे में राय कायम करो। ये कोई दिलचस्पी की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वही कैसे आती है और अल्लाह ताला अपने पैगंबर का इंतखाब कैसे करते हैं, वो तुम्हारे दायरा इल्म से बाहर की चीज़ें हैं। हिदायत पानी है तो यहाँ से रुजू करो। वलकद सर्रफ़ना लिलनासि फ़ी हाज़ल कुरान मिन कुल्ल मसल, हमने इस कुरान में, यानी अब ये बताया कि ज़ाहिर है कि तुम ये तो नहीं कर सकोगे, लेकिन अब ज़रा इसके मज़ामीन पर गौर करो, हमने इस कुरान में लोगों के लिए तरह तरह से हर किस्म की हिकमत की बातें बयान की। यानी इस कुरान के बारे में इस तरह के अहमकाना ख्यालात रखने की बजाय उस हिकमत पर गौर करो जो इसमें बयान हुई है। ये बताना मकसूद है कि कुरान अपने वजूद में, अपने मजामीन में, अपनी हिकमत में, खुद अपने वजूद के कि वो खुदा की किताब है, इतने शवाहिद रखता है कि हर आयत अपनी जगह एक मौजूदा है। तो इस पहलू से गौर करो इस पर। इसमें ज़ाहिर है कि रियाज की ज़रूरत होती है कि कुरान मजीद अहले इल्म के लिए तदब्बुर का मौजू बने, वो शब व रोज़ उसको समझें। ये हकीकत है कि जिन लोगों ने फिर ओढ़ना बिछोना बनाया है उनके लिए ये एक हैरत अंगेज़ मौजज़ा साबित हुआ, और वो ठीक बात नुमाया होकर सामने आ गई जो एक मौके पर रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत से बयान की गई है कि आपने फरमाई ला तनकजी अजायब, इसके अजायब कभी ख़त्म नहीं होंगे। यानी वही आयात जो हम रोज़ाना पढ़ते हैं, तलावत कर रहे होते हैं, किसी वक्त मौजू बहस बन जाए, उनके बारे में कोई सवाल हो जाए, तो ऐसे ऐसे पहलू नुमाया होना शुरू हो जाते हैं जिनके बारे में कभी ख्याल भी नहीं हुआ था। और ये तजुर्बा हर उस शख्स को होता है जिसने कुरान मजीद की ज़ुबान को जाना है, उसको समझा है, और उसके अंदर उतर कर उसके मबाइस को जानने की सही की है। हमने इस कुरान में लोगों के लिए तरह तरह से हर किस्म की हिकमत की बातें बयान की हैं। मिन कुल्ल मसल, मैंने लिखा है कि लफ्ज़ मसल और अमसाल अरबी मुहावरे में इल्म व हिकमत की बातों के लिए भी आता है। ये हमारे यहाँ तो ये उस मफहूम में इस्तेमाल नहीं होता, अगरचे जो हिकमत की बातें हम हमारे मुहावरे बन जाती हैं और आम तौर पर ज़र्ब व अमसाल की शक्ल में बयान होती हैं, हिकमत ही की बातें होती हैं, उनके लिए हम भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम इस्तेमाल में इस तरह नहीं बोलते। अरबी ज़ुबान में आम है लफ्ज़ मसल और अमसाल। अरबी मुहावरे में इल्म व हिकमत की बातों के लिए भी आता है। करीना दलील है कि यहाँ ये इसी मफहूम में है, मिन कुल्ले मसल। हमने इस कुरान में लोगों के लिए तरह तरह से हर किस्म की हिकमत की बातें बयान की हैं, और फिर बहुत हसरत से फरमाया, फअबा अक्सर नासे इल्ला कफूरा। लेकिन ये किस कदर बदकिस्मती की बात है कि फिर भी अक्सर लोग इनकार किए बगैर नहीं रहे, यानी बजाय इसके कि वो इसको समझते, मानते, इससे फ़ायदा उठाते, इससे अपने लिए नूर और रोशनी हासिल करते, इनकार किए बगैर नहीं रहे हैं। और क्या किया उन्होंने, यानी ज़ाहिर है उस वक्त के सामने मुखातबीन हैं, उन्हीं की मिसाल दी जाएगी कि उनके लिए ये हिकमत की इतनी बड़ी किताब थी। अरब के बद्दू कोई पीछे इल्म की तारीख नहीं है, उसमें यक बयक एक शख्स ने खड़े होकर ये हिकमत उनके सामने पेश कर दी। होना तो ये चाहिए था कि लपकते, उसकी कदर करते, लेकिन इनकार कर दिया। और देखिए इनकार करने के लिए क्या राय इख्तियार की। इससे पीछे बयान हुआ कि ये पूछते हैं कि ये मालूम होगा ना हमें कि वही आती कैसे है, फिर देखेंगे। जब वो बात नहीं बनी तो वह कालू लन नुमिन लका हत्ता तफजुर लना मिन लर्द यम्बुआ ओ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलम व एनब व तुफजर लनहारा खिलाला तफजीरा ओ तुस्कत समा कमा जामता अलैना किसफन न ताती बिल्लाहि वल मलाइकत कबीला ओ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रफ़िन औ तरका फिस समा वलन नुमिना लिरुक़्यिक हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊ कुल सुभान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूल। क्या शान का कलाम है। फरमाया के मानने की बजाय और फ़ायदा उठाने की बजाय इन्होंने कह दिया है कि हम तुम्हारी बात न मानेंगे जब तक तुम हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा न जारी करो, या तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हमारे सामने पैदा न हो जाए, फिर उसके बीच में तुम बहुत सी नहरें ना दौड़ा दो, या जैसा कि तुम कहते हो हमारे ऊपर टुकड़े टुकड़े आसमान न गिरा दो, या अल्लाह और उसके फरिश्तों को लाकर हमारे सामने खड़ा न कर दो, या तुम्हारे पास सोने का कोई घर न हो जाए, या हमारी आँखों के सामने तुम आसमान में न चढ़ जाओ, और हम तुम्हारे चढ़ने को भी मानने के नहीं हैं जब तक तुम वहाँ से हम पर कोई किताब ना उतारो जिसे हम पढ़ें। ये जवाब दिया, ये कहते हैं, यानी पहले ये कि वही कैसे आती है, और फिर ये तो कुरान क्या है, उसकी हिकमत क्या है, वो कितनी बड़ी नेमत है, इन्होंने उसकी कदर नहीं पहचानी। और जवाब देखिए, ये सब कुछ नकल करने के बाद क्या दिया, कुल सुभान रब्बी हल कुंत इल्ला बशर रसूला। इनसे कहो पाक है मेरा परवरदिगार, क्या मैं एक इंसान के सिवा और भी कुछ हूँ जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है। इनसे कहो कि ये मुझसे क्या मुतालबे कर रहे हो, मैंने कोई दावा किया था इस तरह का कि मैं ये काम करने के लिए आया हूँ? मैं तो तुम्हारी तरह तुम्हारे ही अंदर का एक बशर हूँ, इंसान हूँ, मुझे ये पैगाम दिया गया मैं पहुँचा रहा हूँ, मैंने कोई आके इस तरह की जादूगरी के दावे नहीं किए थे जो मुझसे इस तरह के मुतालबात कर रहे हो। फरमाया इनसे कहो पाक है मेरा परवरदिगार, क्या मतलब है इसका, ये सुबहान रब्बी मैंने लिखा है, यानी इससे पाक है कि किसी इंसान को इस तरह के इख्तियारात देकर अपनी खुदाई में शरीक कर ले। यानी ये तो फिर वही कर सकता है कि जो या खुद खुदा हो या खुदाई में शरीक हो जाए। तो जवाब में कहा कि मैं तो तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, मेरा इंतखाब किया गया है तुम्हारे अंदर से, और मुझे इस रहमत से सरफराज किया है जैसे पीछे बताया कि ये हमारा फ़ज़ल और हमारी इनायत है। तो यही जवाब दे दिया उनको, इस तरह की अहमकाना बातें करते हो तो करते रहो, इसके नताइज भी देख लोगे, मैं तो बस यही हूँ, इंसान के सिवा कुछ और भी हूँ जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है। बहुत बलीग जुमला है ये। इस पर मैंने हाशिया लिखा है, ये एक मुख्तसर सा जुमला है, मगर इस कदर بلیغ ہے کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے؟ میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ زمین و آسمان میری مٹھی میں ہیں اور میں ان میں جو تصرف چاہے کر سکتا ہوں؟ میں نے پہلے دن سے صرف اتنی بات کہی ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. مجھے بتاؤ کہ میری اس بات کا تمہارے ان مطالبات سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب تو خدا کے کام ہے اور میں نے ایسا کوئی دعویٰ کبھی کیا ہی نہیں. تو یہ ساری بات گویا اس مختصر سے جملے کے اندر چھپی ہوئی ہے. فرمایا یہ جواب دو ان کو. وَمَا مَنَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. اب دیکھیے وہاں پیچھے یہ بتایا تھا کہ نفسیاتی الجھنیں کیا پیدا ہو جاتی ہیں, انسان کے ہاں تعصبات کس طرح کام کرتے ہیں اور قبول حق میں کیسے رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب پھر جب یہ تبصرہ کیا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر انسان اس طرح حکمت پر توجہ کرنے, فلسفے پر توجہ کرنے, علم کو سمجھنے اور اس کو جس طرح کہ اس کا جائزہ لینا چاہیے اس طرح جائزہ لینے کی بجائے یہ گریز و فرار کے سوالات کیوں کرتا ہے؟ اس میں بھی بہت سے نفسیاتی عوامل کار فرما ہوتے ہیں. اس پر اب تبصرہ کیا ہے. جب ان کے پاس ہدایت آ گئی, یعنی اللہ کی ہدایت اپنے تمام دلائل و براہین کے ساتھ آ گئی, جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے. یعنی جو جواب ہم نے دیا ہے اسی میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہی رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ یہ رکاوٹ بن گئی. یعنی یہ باور ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے اندر سے کسی انسان کا انتخاب کر کے اس کو یہ منصب دیا جا سکتا ہے اور کوئی انسان بھی یہ شرف حاصل کر سکتا ہے. تو بار بار دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح پیدا ہوئے, ہماری طرح بازاروں میں سودا سلف خریدنے جاتے ہیں, ہماری طرح بات کرتے ہیں اور اچانک اب یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں. تو فرمایا کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا ان کی. اور اسی وجہ سے دوسری جگہوں پر ہے اور یہاں بھی آگے اسی کا جواب دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بنا کے بھیجنا تھا, یعنی پہلے تو وہ اعتراض کیا وہی کیا ہے, اچھا اگر رسول ہو تو پھر یہ کارنامے کر کے دکھاؤ. جب اس پر بھی تبصرہ کر دیا تو اب یہ کہ بشر ہی کو رسول کیوں بنا کر بھیج دیا, کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا آسمان سے. دیکھیے اب اس پر تبصرہ کیا. ارشاد فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا. ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے, یعنی فرشتوں کا آنا جانا تو رہتا ہے لیکن وہ زمین کے باشندے ہوتے, تمہاری طرح زمین پر وہ بسے ہوئے ہوتے, تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتارتے, پھر فرشتہ ہی آتا. لیکن زمین تو تمہیں دی گئی تھی, زمین کا اقتدار تمہارے سپرد کیا گیا ہے, زمین پر تم رہ رہے ہو, اس وجہ سے تمہارے اندر تمہاری ہدایت کے لیے انسان ہی آئے گا. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اسی طرح اطمینان کے ساتھ فرشتے چل پھر رہے ہوتے جس طرح انسان چل پھر رہے ہیں. یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے تو فرشتوں کا زمین پر آنا جانا رہتا ہی ہے لیکن وہ اس کے مستقل باشندے نہیں. تو اس وجہ سے یہ مطمئن ہو کر چل پھر رہے ہوتے کا اسلوب اختیار کیا. اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے, فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے تاکہ وہ حجاب باقی رہے جو امتحان کے لیے ضروری ہے. یعنی یہ کیوں ضروری ہے کہ فرشتوں کے لیے فرشتے رسول ہوں اور انسانوں کے لیے انسان اور جنوں کے لیے جن, کیوں ضروری ہے؟ اس کی میں نے وضاحت کی ہے, تاکہ وہ حجاب باقی رہے جو امتحان کے لیے ضروری ہے. ورنہ اگر فرشتوں کے لیے انسان اور انسانوں کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے اور انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے تو امتحان کے لیے کیا باقی رہ جاتا؟ پھر تو حجاب اٹھ جاتا, پردے اٹھ جاتے, کچھ بھی باقی نہ رہتا. پھر مزید یہ کہ اپنے ابنائے نو کے لیے اسوہ اور نمونہ بھی وہی بن سکتے تھے. تو دونوں پہلوؤں سے یہی علم و عقل کا تقاضا ہے, یہی ہونا چاہیے تھا. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے, اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کو دیکھ رہا ہے. تو یہ بتا دیا کہ اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ صادر ہو جائے گا. اس کا مدعا یہ ہے کہ یعنی اس بات کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ جانتے بوجھتے محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہو یا تم پر فی الواقع کے بات ہی واضح نہیں, اس کا فیصلہ اب ہو جائے گا. اور یہ فیصلہ یہاں بھی ہو جائے گا, آگے بھی ہو جائے گا. نہیں بات سنتے تو یہ فیصلہ ہی ہے جس کا اب ہم کو بھی انتظار کرنا ہے, اور تم کو بھی, تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.